मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 22 जून 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर का मुख्य विषय कि हम किस पर बात करने जा रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि पिछले सप्ताह के किसी ऑडियो में मैंने आपसे एक वायदा किया था कि जो इंटरनेशनल रिलेशन जो आपके सिलेबस में है उसकी तैयारी कैसे की जानी चाहिए, तो मैं आज के इस मुख्य विषय के रूप में इसी विषय पर आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। और साथ ही साथ अभी फिलहाल जैसे ही सुविधा होगी, गुंजाइश होगी, मैं आपकी जो प्री एग्जामिनेशन जो खत्म हुए हैं उसके बारे में कभी कभी बात करता रहूंगा और अब आपको अपनी तैयारी को कैसे अंजाम देना चाहिए इस पर भी मैं लगातार कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन निर्देश लगातार आपसे बातें करता रहूंगा। हो सकता है कि बीच बीच में कभी मिसिंग भी हो जाए समय के दबाव और दूसरे विषयों के महत्व को देखते हुए, फिर भी हम लगातार इस पर कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं न्यूज पर, कल के न्यूज पर। और एक अच्छी बात यह है कि कल के न्यूज में ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जिसको आधार बनाकर हम विस्तार से बातें कर सके। आपने रेडियो न्यूज और दूरदर्शन न्यूज सुनी होगी फ्रेंड्स, योग के बारे में बहुत विस्तार के साथ बातें कही गई हैं। योग कहां कहां हुआ, क्या क्या हुआ, तो सिविल सर्विस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन योग भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, फिलॉसफी का भी है। मैं संस्कृति जानबूझ करके कह रहा हूं, अदरवाइज योग हमारी फिलॉसफी का अंग है, राइट। तो योग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, योग क्या है, किसने इसकी स्थापना की, इसके मुख्य अंग क्या क्या होते हैं, किस तरीके से यह विश्व में लोकप्रिय हो रहा है, क्या इसके लाभ हैं, इस तरह की एक सामान्य सी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अब 3 साल हो गए हैं, इस पर अभी तक प्रश्न सीधे सीधे बीच के 3 सालों में नहीं पूछा गया है, जबकि सामान्यतया हम समझते हैं कि चूंकि इस साल योग दिवस घोषित हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इतनी महत्वपूर्ण घटना है, भारत को विश्व स्तर पर इतना सम्मान मिला है, तो इस साल इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम अनुमान लगाते हैं। लेकिन यूपीएससी भी कम होशियार नहीं है, वो समझ जाता है कि इस पर सब तैयारी कर रहे होंगे तो वो गच्चा भी दे देता है, उस साल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कभी नहीं पूछेगा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी फिलॉसफी का भी हिस्सा है, ये हमारी संस्कृति का भी हिस्सा है और सच पूछे तो हमारे इतिहास का भी अंग है, इसीलिए इस पर आपकी एक छोटी सी तैयारी, सामान्य सी तैयारी तो होनी ही चाहिए, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। मित्र, जो दूसरी खबर थी वो थी कि कर्नाटक ने भी किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। हालांकि किसानों के कर्ज माफ से उसके ऊपर सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का ही भार आएगा, लेकिन कर्नाटक जितना छोटा स्टेट है उसको देखते हुए, चाहे वो कर्नाटक के 8,000 हो या आपके उत्तर प्रदेश के 36,000 हो, मुझे लगता है कि बराबर ही वजन रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपने न्यूज में एक और बात सुनी होगी, देखिए पॉलिटी इसी को कहते हैं, है ना। कर्नाटक ने भी कर्ज माफ कर दिया, यह तो एक घटना है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे पॉलिटी क्या है? देखिए, इसके न्यूज के ठीक बात जो बात कही गई थी वो कहा गया था कि अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने हैं, इसका मतलब है कि वो चुनाव की का लाभ लेने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाती है। इसे आप किस रूप में लेते हैं? क्या यह गलत है, असंवैधानिक है, या अवैधानिक है, या अनैतिक है? यह सोचने की बात है और आपको इस पर सोचना भी चाहिए। ज्यादातर लोग इसे आउटराइट रिजेक्ट करते हैं कि नहीं नहीं ये पॉलिटिक्स है और गंदी पॉलिटिक्स है। मित्रों, यहां मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा संयत बरतें, थोड़े से संतुलन में आए। संतुलन में इस मायने में कि फिर डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी बहुमत का शासन है, और चाहे वो अल्पमत ही क्यों ना, बहुमत का शासन तो होता है, लेकिन आप देखेंगे कि अल्पमत की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। अभी हमारे राष्ट्रपति पद के लिए जिन उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी एनडीए ने की है, आप देखिए कि उन पर जो लेख आ रहे हैं, जो एडिटोरियल कमेंट भी आ रहे हैं, उसके तहत इस बात की प्रशंसा की जा रही है कि एनडीए ने एक ऐसा डिसीजन लिया है कि अब उनका विरोध करने का साहस दूसरे लोग नहीं कर सकते। सामान्यतः। और आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल मिल करके अगर अपना कैंडिडेट भी घोषित करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो कैंडिडेट होगा वो मतलब दलित वर्ग से होगा, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, जो भी कह लीजिए, इस वर्ग से होगा। तो अब दलित वर्ग के व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जा रहा है तो दलित वर्ग तो बहुमत में नहीं है, भारत की बहुसंख्यक जनता तो दलित नहीं है, अल्पमत में ही है ना। लेकिन आप उस अल्पमत की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, अगर आपको बहुमत में आना है तो कई अल्पमत के जोड़ से ही आप बहुमत तक पहुंचेंगे, अकेले नहीं पहुंच सकते। तो यही तो डेमोक्रेसी की ताकत है कि किस तरीके से अल्पमत भी अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति शासन से करवा सकता है। इसे ही हम कहते हैं प्रेशर, डेमोक्रेटिक प्रेशर। जो ग्रुप्स बने हुए हैं, प्रेशर्स ग्रुप, इन्हें आप प्रेशर ग्रुप्स भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से ये गलत नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि क्या इस तरीके से समस्याओं के सही समाधान हो सकते हैं। किसानों के कर्ज माफी की गई, किसानों की बहुत दयनीय स्थितियां हैं। आप देख रहे हैं कि आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं, किसानी छोड़ते जा रहे हैं, और इसके बारे में हमारे पास लगातार आंकड़े भी उपलब्ध हैं। इसके बाद भी सरकार एक ठोस नीति क्यों नहीं बना पा रही है, एक जो स्थिर नीति होनी चाहिए उस स्थिर नीति का अभाव सरकार के पास क्यों है। तो जब तक हम एक ठोस नीति लेकर नहीं चलेंगे तब तक स्वाभाविक है कि हम समस्याओं का निदान नहीं कर पाएंगे। और अभी किसानों को लेकर आपने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, यहां तक कर्ज माफी को लेकर के भी पढ़े होंगे, तो देखा होगा आपने कि सबका जो स्वर है वो एक ही है, और वह यह है कि कर्ज माफी इसका स्थायी समाधान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के बाद से लेकर अब तक हम किसानों की समस्याओं के निदान के स्थायी हल में असफल रहे हैं, यानी कि जो हमारी कृषि नीति रही है वह सफल नहीं रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम भारत की जो अब तक की कृषक नीति रही है या कृषि नीति, दोनों एक ही है, उन पर अच्छे से तैयारी करें। तो मित्रों, न्यूज में बस ये दो ही बातें थी। अब मैं इससे पहले कि अपने सीधे सीधे विषय पर आऊं, आपको मैं आज का जो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द डे, उससे थोड़ा सा परिचय करा दूं। एक बात मैं यहां कह दूं फ्रेंड्स कि कभी कभी मुझे ये महसूस होता है कि जो मैंने फैक्ट ऑफ द डे यानी कि आज का तथ्य का जो निर्णय लिया है वो महत्वपूर्ण तो है, मुझे लगता है, और उपयोगी भी है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे हम एक रिदम में बात कर रहे हैं, न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बीच में जो ये फैक्ट आ जाता है फैक्ट बताने में, तो वो जो पूरा का पूरा एक रिदम है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, उसकी लय भंग हो जाता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर कभी कभी महसूस होता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको मैं कब लूं, क्योंकि यदि मैं उसे बिल्कुल आखिरी में लूं तो जब हम विषय पर बात करने लगते हैं तो बात करने के लिए इतना सारा होता है कि समय की बहुत कमी पड़ने लगती है। तो अचानक लगता है कि अरे इतना समय हो गया, अब इस विषय को खत्म करना चाहिए, तो फिर अगर मैं वहां फैक्ट को लूंगा तो केवल एक लाइन दो लाइन बोल करके खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी फैक्ट को एक दो पंक्ति में खत्म कर दूं, क्योंकि जब तक मैं उसके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा तब तक आप उसे विस्तार से समझ भी नहीं पाएंगे, और जब तक आप विस्तार से समझ नहीं पाएंगे तो उसका उपयोग भी शायद उतने अच्छे तरीके से आप न कर पाएं। और मेरी ये पद्धति भी नहीं है कि मैं एक दो वाक्य में या टिप्स देकर बात अपनी खत्म कर दूं। इसलिए मित्रों, यहां जो कहने की बात यह है कि बीच बीच में कभी कभी ऐसे मौके आ सकते हैं जबकि मैं आपको फैक्ट ऑफ द डे न बताऊं, तो उसे आप मान करके चलिएगा कि आज किसी वजह से ये बात नहीं बताई गई है, राइट। फ्रेंड्स, आज का जो फैक्ट ऑफ द डे है दोस्तों, वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का एक सूत्त है, भगवान बुद्ध का महापरिनिब्बाण सूत्त। महापरिनिब्बाण सूत्त आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। उस सूत्त में, मतलब ये किताब है समझ लीजिए आप सरल भाषा में, उस सूक्त में भगवान बुद्ध के जो जीवन के अंतिम तीन माह रहे हैं, जो जीवन के अंतिम तीन महीने हैं, उनकी घटनाएं दर्ज हैं और उनके उपदेश दर्ज हैं कि उन अंतिम तीन महीनों में गौतम बुद्ध ने क्या कहा है और उनके साथ क्या क्या घटनाएं, किस किस तरीके की घटनाएं घटी थी। मित्रों, इसी में से मैं आपको तीन तथ्य बताने जा रहा हूं जिनका उपयोग आप अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा कि जो रेफरेंस मैंने दिया है उस रेफरेंस को आप जरूर याद रखें, वह है महापरिनिब्बाण सूत्र। परिनिब्बाण है, ये निर्वाण नहीं है, सूत्र। उन्होंने पहली बार उसमें जो दर्ज है, पहला उनका संदेश वो ये है, मेरे धर्म का विषय दुख को दूर करना है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं, वो जीवन से एकदम जुड़े हुए हैं। मेरे धर्म का विषय, धर्म का विषय मोक्ष प्राप्ति नहीं है कि आप संसार के चक्र से मुक्त हो जाएं, जीव आपका दुख दूर हो जाए। देखिए उन्होंने धर्म को किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, इन पर विचार कीजिएगा आप, ये गौतम बुद्ध हैं। दूसरा वो कहते हैं, जो चित्त संयम नहीं करेगा उसे निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। संयम, जो चित्त संयम नहीं करेगा उसे निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, यदि आप लाइफ मैनेजमेंट मेरा सुन रहे होंगे तो पैरल अभी हम लोग डिसिप्लिन पर बात कर रहे हैं और वो संयम ही है। और यहां आप देखें कि गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं कि ये जो संयम है ये हमारी चेतना में होनी चाहिए, विचारों में नहीं, चेतना में अंदर रच बस जाना चाहिए। तीसरा बिंदु जो उन्होंने कहा है वो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ही अन्न ग्रहण करें कि भूख का शमन हो, इतना ही पानी पिए कि प्यास बुझे, तितलियां फूलों की सुगंध कायम रख कर मधुपान करती हैं, ठीक इसी तरह पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना अपनी जरूरतों की पूर्ति करें। कल्पना करके देखिए कि आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध पर्यावरण के बारे में क्या कह रहे हैं, जबकि उस समय पर्यावरण का कोई वैसा संकट हमारे सामने उपस्थित नहीं था। तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का कथन गौतम बुद्ध का पर्यावरण के बारे में भी है? तो मित्रों, आज के फैक्ट के रूप में मैंने ये तथ्य आपको बताए हैं। अब मैं आता हूं अपने दो बिंदुओं पर, पहला आपके प्रिपरेशन को लेकर के और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी को लेकर। दोस्तों, जो आपको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अब करनी है उसकी शुरुआत करने के लिए आज मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा। और छोटी सी बात यह है कि आप अगर YouTube पर जाएंगे तो वहां मेरा एक प्रोग्राम है 11 पिलर्स पर, 11 पिलर्स यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए जो 11 मुख्य स्तंभ होने चाहिए, 11 मुख्य बिंदु होने चाहिए, उस पर मैंने बात की है। उस पर एक वीडियो उसमें डला हुआ है, प्लीज आप सब उसे एक बार देख लें, सुन लें, लेकिन इंटरटेनमेंट के लिहाज से नहीं, सुनने के लिहाज से नहीं, समझने के लिहाज से पूरे ध्यान से सुने। यह काम सिर्फ एक दिन करें। इसके बाद इन 11 पिलर्स की डिटेल्स है, उस फिर एक एक पिलर्स को लेकर के, यानी कि एक एक बिंदु को लेकर के उसकी व्याख्या है। अभी तक 8 व्याख्याएं YouTube पर डाली जा चुकी हैं, 8 पिलर्स डाले जा चुके हैं, पिलर 1 पिलर 2 पिलर 3, इस तरीके से करके 8 पिलर्स। आप सब जो बहुत से मेल के जरिए मुझसे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं अखबार पढ़ने के बारे में, न्यूज सुनने के बारे में, तो इन सब पर वो पिलर्स अवेलेबल हैं, वो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, प्लीज इन्हें भी सुने और एक एक करके सुने। यानी कि एक को एक ही दिन में 8 निपटा दिए। निपटाने के शब्द को सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की अपनी डिक्शनरी से आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर हम निपटाने के लिए पढ़ेंगे तो मान करके चलिए कि ये एग्जाम भी हमें निपटा देगा। यहां आपको अपनी समझ विकसित करनी है और पूरी संवेदनशीलता के साथ विकसित करनी है। तो मित्रों, सबसे पहले आप 11 पिलर्स को सुने और इसके बाद फिर रोजाना एक एक पिलर्स को सुने और उन पर विचार भी करें, उनके पॉइंट्स अपने दिमाग में याद रखें, ताकि जब आप उसे एक्शन में लाएं तब आप वैसा कर सकें। तो मित्रों, अब मैं आता हूं इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी पर। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ये एक संकट होता है डेली ऑडियो लेक्चर के साथ, मैं क्या करूं। मैं आपको आज कुछ केवल पॉइंट्स बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन मैं कल करूंगा, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि वक्त मेरे हाथ में नहीं है और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं या बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि उसे उससे भी शॉर्ट फॉर्म में बताया जाना चाहिए था। यदि आपको मुझे समझाना है तो, यदि बताना है तो बात अलग है। तो फ्रेंड्स, जो इंटरनेशनल रिलेशन की जब आप तैयारी करेंगे तो आप पहला तो एक काम करें, और वह काम यह होगा कि आपकी मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस की बात कर रहा हूं, प्री के सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं इसके बारे में, आप मेंस के सिलेबस को पहले देख लें कि मेंस के सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी के बारे में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। आप यहां इस द्वंद में मत पड़िएगा कि हमको तो पहले प्री की तैयारी करनी है और सर तो मेंस के बारे में बता रहे हैं। मैं यहां एक सैद्धांतिक बात बता दूं, और वह यह है कि प्री की तैयारी करने जैसी एज एज सच कोई बात नहीं होती है, आप प्री की तैयारी करते ही नहीं है, प्री की तैयारी तो अपने आप हो जाती है, आप तैयारी करते हैं मेंस की। मेंस की तैयारी में प्री की तैयारी समाहित है, और केवल अंतर जो है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट का है, क्वेश्चन के फॉर्मेट का है बस। मेंस में एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, और प्री में वह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, दैट्स ऑल। थोड़ा सा फिर हम प्रैक्टिस करके मेंस की प्रिपरेशन के आधार पर प्री के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्री की तैयारी हमारी हो जाती है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, और वो ये कि इससे पहले कि कल आप मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुने, आपको चाहिए कि आपके दिमाग में हमारा जो सिलेबस है मेंस का वो हो, मौजूद हो, और मेंस जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर है उसमें इसका सिलेबस मौजूद है। उस सिलेबस के लास्ट में देखेंगे आप कुछ पॉइंट्स बकायदे दिए हुए हैं, पॉइंट्स में दिए हुए हैं, डिटेल्स में दिए हुए, मतलब वहां सीधे सीधे इंटरनेशनल रिलेशन कह के बात नहीं खत्म कर दी गई है, बकायदे पॉइंट्स दिए गए हैं कि क्या 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 आपको पढ़ना है। प्लीज आप उन्हें पढ़ लें, क्योंकि जब आप पढ़ लेंगे तब आप मेरी आगे की बातों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। समझ तो वैसे भी लेंगे लेकिन ज्यादा अच्छे से समझ लेंगे, और याद रखिए कि बात समझने से नहीं बनेगी, बात ज्यादा अच्छे से समझने से बनेगी। जो ज्यादा अच्छे से समझ लेगा वो ज्यादा नंबर पा लेगा, और जो ज्यादा नंबर पा लेगा वो सिलेक्शन लिस्ट में अपना स्थान बना लेगा। तो मित्रों, अब इससे पहले कि मैं आपसे नमस्कार करके विदा लूं, मैं अब स्वागत करना चाहूंगा अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन चार साथियों के नाम हैं प्रभात मिश्रा, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, प्रतीक तिवारी, आप भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, दुर्गेश्री त्रिपाठी, आप श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से हैं, और आनंद लाभनिया, आप इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। आप सभी चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।